سورة النمل 62 ام من يجيب المضطر اذا دعاه، 20 پارے کے شروع میں کیا پتہ چلا؟ شدید پریشانی میں ایتھیس جو ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ یاد آتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں او گاڈ، او گوش، یہ کدھر سے آ گیا؟ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، میں مانتا تو نہیں ہوں اللہ کو، لیکن یہ دکھ میں غم میں ایک دم میرے منہ سے نکل گیا. چند سال پہلے، شاید میرے خیال ایک یا دو سال گزرے ہوں گے، تو شکاگو ایئرپورٹ پر ایک جہاز ابھی نیچے ہی تھا، اڑا نہیں تھا، تو اس کے آگ لگ گئی تھی اندر نیچے. خیر وہ بجھانے کی کوشش کی، پتہ چلا کہ ڈور لاک ہو گئے ہیں، وہ نہیں کھل رہا. آپ سوچئے ذرا، پیسنجرز جہاز کے اندر ہیں اور پیچھے جہاز کے نیچے پیندے میں آگ لگی ہوئی ہے، کیا حالات ہوئے ہوں گے. اور جب ان کو پتہ چلا، ابھی زمین پہ ہیں، کہیں نہیں گئے، لیکن بس وہ آگ کا احساس کہ ابھی ڈیزل کو آگ لگے گی، جہاز پھٹ جائے گا. پھر جو ان کی آوازیں تھیں ریکارڈنگز میں آئی ہوئیں، اور اس میں سب سے بڑی آواز گاڈ گوش کی تھی. بالآخر انہوں نے کچھ کوشش کر کے دروازہ کھلوایا اور سیڑھی لگا دی کہ نکلیں. وہ جو منظر تھا دیکھنے کے قابل، لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں اپنے ہینڈ کیری کی کس کی، صرف وہ اپنی جان کو لے کر جوتے پکڑ کر جہاز کی ونڈو سے جب باہر جا رہے تھے چیخے مارے تھے او گاڈ او گوش، کہ چلو ہم بچے ہیں، آگ لگتی ہے جہاز کو تو سامان کو لگے، ہمیں نہ لگے. یہ ہے اس دنیا کی حقیقت. اس دنیا کو دیکھیے تو آپ کو یقین آتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی دنیا بنائی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دکھ میں ہر شریک گم ہو جاتا ہے. مکہ والے بھی سمندروں میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، اور روزے قیامت اللہ کے ساتھ بنائے گئے تمام شرک بھول جائیں گے، سارے مشرک بھاگے ہوں گے، اور جن کو بڑا سمجھا تھا وہ غائب ہوں گے. تو لہٰذا خالص اللہ کو پکاریے، غموں سے نجات کا یہی نسخہ ہے. اور پھر کبھی بیماری ہی شفا بن جاتی ہے، یہ بھی بڑا انیوژل ہوتا ہے کہ آپ بیمار ہوں لیکن وہ بیماری آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے. اہل سیر، ابھی اس کو سیر نہ پڑھیے پلیز، ہم عربی اردو کا فرق سمجھیں، نہ سمجھتے ہوں تو عرب لگا لیا کریں. سیر کہتے ہیں سیرہ، لکھنے والے، کہانیاں. اور جیسے سیرت ہے وہ سیرت النبی ہے، سارا یسیر اسیرن سے، دوبارہ آپ کہہ سکتے ہیں ہسٹورینس. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی پر فالج گرا، اسے گھر میں بٹھا دیا گیا، حزن و ملال اور مایوسی کے کئی سال گزر گئے، ڈاکٹر اس کے علاج میں ناکام ہوئے، اور یہ بات انہوں نے اس کے گھر والوں کو بھی بتا دی. ایک دن گھر کی چھت سے ایک بچھو گرا، وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا، بچھو اس کے سر پر آ گیا اور اسے کئی بار سر پر کاٹ کھایا، زہر کے مارے اس کا جسم سر سے پیر تک کانپ گیا. کیا دیکھتے ہیں کہ زندگی اس کے جسم میں لوٹ آئی، مردہ رگوں میں خون دوڑ گیا. اب وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھا، چستی کے ساتھ پیروں پر کھڑا ہوا، کمرے میں چلا، پھر دروازہ کھول کر اپنے بیوی بچوں کے پاس آیا. انہیں اسے کھڑا اور چلتا دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا. پھر اس نے ساری بات بتائی، یعنی اس کی اس فالج کا یا اس ہینڈی کیپنس کا علاج بچھو کے زہر میں تھا. یہ کیمو تھراپی بھی تو کچھ زہر ہی ہے نا. بس اللہ ہی کی عظمت ہے کہ اس نے اس کا علاج زہر میں رکھ دیا تھا. اس قصے کا ذکر بعض ڈاکٹروں سے میں نے کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی اور کہا کہ اس قسم کے مریضوں کا علاج زہر سے کیا جاتا ہے، جس کی حدت سے مراد گرمی، کیمیاوی طریقے یعنی کیمیکل ویسٹ سے کم کر دی جاتی ہے. یعنی بچھو نے تو ذرا ایک دم کاٹا ہوگا نا، تو بہت ہی تکلیف ہوئی ہوگی، چبا ہوگا، گرم ہوگا، میڈیکل میں اس کو ذرا لو انٹینسٹی کا کر دیتے ہیں. کتنا عظیم ہے اللہ تعالیٰ، جس کی صفت یہ ہے کہ اس نے جو بھی مرض اتارا ہے اس کی دوا بھی نازل کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیں یہ لائف چینجنگ سٹوریز ہیں، اگر آپ میں سے کسی کو اچھی لگے تو دوسروں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. کیا پتہ کسی کو ایسی ہی کہانی اپنی بھی یاد ہو. تو کیا پتہ چلا، کبھی بیماری ہی شفا بن جاتی ہے. اور یہ سب اللہ کرتے ہیں، یاد رکھیے، آپ کے میرے اللہ. کسی بیماری میں زہر دوا بن جاتا ہے، ویسے ہی دلوں کی بیماریوں کے لیے لوگوں کی زہریلی باتیں دوا بن جاتی ہیں. یہ بھی ایک ذرا ڈپریشن کا سٹائل سمجھیے گا، لوگوں کی باتیں کبھی کبھی آپ کو بڑی جرت دیتی ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے، بہت ہی عزیز دوست تھی، ساتھی تھی ہماری، जब मिली तो तभी पता था कि उसके वालिद की डेथ हो चुकी है। ये बच्चे भी छोटे थे, ये भी यंग थी बिल्कुल, कॉलेज स्कूल में साथ चलते आते थे। उसकी वालदा बहुत अच्छी लगती थी मुझे, कभी कभी उनके घर चले जाना तो बड़ी, जैसे कहते हैं, जहाँ दीदा, और कह दें कि आयरन वूमेन लगती थी। तो एक दिन बातों में पूछा, आंटी जी सुनाएं क्या हुआ कैसे हुआ। यानी उन्होंने एक तो अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की, ये इनकी बेटी भी हाफिज़ा थी, बेटा भी एक हाफिज़ था, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन दो तीन बेटे थे। बड़ी छोटी छोटी उम्रों में उनको दुकानें डाल दी, काम करते थे और अपनी अपनी जगह पे सब कामयाब थे, और इस बच्ची का भी रिश्ता कर दिया, शादी कर दी। तो ऐसे कभी हम बैठे तो हमने कहा, आंटी जी आप सुनाएं, आपने अपने बच्चों की जो इतनी तरबियत की और इतनी माशाल्लाह ये कामयाब हैं छोटी छोटी उम्रों में, तो कैसे हुआ? जब अंकल की डेथ हुई होगी तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? तो इन्होंने कहा कि इसकी वजह मेरी नंद है। अच्छा, उनकी बात जब मैंने पहली दफ़ा सुनी ना, तो मुझे क्या लगा कि ये, हमें पहले ही पता था कि इनके वालिद बहुत बीमार रहे, तवील अरसा बीमारी, बेड रिडन थे, और उसके बाद फिर उनकी डेथ हुई। जब उन्होंने कहा कि इसकी वजह मेरी नंद है, तो मेरे दिल में आया कि ज़ाहिर है कि भाई बीमार थे तो वो बहन बेचारी ख्याल रखती होंगी बच्चों का, भाई का, बच्चों का, और फिर वो इंतकाल हुए तो उनके जाने के बाद बहन ने भतीजे भतीजे उनका ख्याल रखा। तो हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि जब मेरे शौहर बीमार थे ना, तो घर में खाने को नहीं था, बीमारी पे भी लग रहा था, तो कुछ उधार लिया उनसे ना ज़रूरत के लिए, जो उन्होंने दिया। लेकिन इनके हस्बैंड नहीं बचे, उनकी डेथ हो गई। सब रिश्तेदार जो भी आए बैठे, तीसरे दिन जब रिश्तेदार जाने लगे तो इनकी नन ने इनसे कहा, भाभी वो पैसे आज दोगी या बाद में? बस कहती हैं ये था उनका वो जुमला जिससे मुझे समझ आ गया कि अब ये गाड़ी मैंने खुद चलानी है। यानी उनकी अन्ना पे चोट पड़ी कि कैसे उनका मुंह भरा कि वो आज उस पैसे का तकाजा करे जबकि दो दिन पहले भाई गया, कहाँ से देते। कहती उसके बाद मैंने हर रिश्तेदार से नज़रें बदल ली, यानी मैंने उम्मीद ही ना लगाई कि कोई मदद करेगा। मैंने कपड़े सिए, मैंने मेहनतें की, छोटे छोटे बच्चों को साथ लगाया और इनको खुददारी सिखाई कि किसी से मांगना नहीं। उनको तो दे दिए जमा करके और उसके बाद नहीं लिए। तब बात सुनिए कि कभी कभी लोगों की जहरीली बातें आपके लिए अच्छी होती हैं, आप उसकी वजह से उठिए, ताकत रखें। ज़िंदगी की तलखियां इंसान के अंदर की कड़वाहट को ख़त्म करके उसे मीठा कर देती हैं। आप में से कभी किसी को कोई हादसा लगा हो तो बताइएगा कैसे ज़िंदगी के हालात होते हैं। कभी अचानक बेटी की डेथ हो जाती है, कभी बेटे की डेथ होती है, वाक़या तो आपके भी बहुत से होंगे, मैं भी सुनती रहती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि कुछ हादसे कितने कीमती होते हैं जिसके बाद रब की तरफ जाने का एड्रेस मिल जाता है। तो ज़िंदगी की तलखियों को अपनी ज़िंदगी के लिए एक ग़िज़ा बनाइए, मीठा बनाइए। और इसी पे शायद इकबाल ने कहा कि चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी कभी करता है कारे तरी आकी। कभी कभी हमें अपने बड़े के मुंह से बात बड़ी बुरी लगती है, स्पेशली जब वो हमें समझाए, हमें नसीहत करे, हाँ। लेकिन अलावा इकबाल कहते हैं, ये जो मैं कड़वी बातें कह रहा हूँ ना, इसको सुनो, तुम्हें इस वक्त ये जहर लग रही है लेकिन ये तरियाक होगा। तरियाक कहते हैं जहर का तोड़। तो बात यही है, अल्लाह करे हमें बड़ों की बातें ज़िंदगी में समझ आ जाए। फिर इसी तरह आप देखिए कि जिस्म की बीमारी से दिल की बीमारियों की शिफा अल्लाह के नबी ने फरमाया, मिश्कात की रिवायत है 1579। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, यानी हदीसे कुदसी है ये, जब मैं अपने किसी मोमिन बंदे को आजमाता हूँ तो वो मेरे इस आजमाने पर मेरी हम्द और शुक्र बजा लाता है, तो वो अपने इस बिस्तर से उस रोज़ की तरह गुनाहों से पाक साफ उठता है जिस रोज़ इसकी वालदा ने इसे जन्म दिया था। और रब्बे तबारक ताला फरमाता है, मैंने अपने बंदे को रोके रखा और इसे आजमाइश में डाला, तुम इसे वैसे ही अजर अदा करो जिस तरह तुम इसे इसके सेहतमंद होने की सूरत में अजर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। तो आज अगर इस लॉकडाउन में कुछ लोग मस्जिदों में नहीं जा पा रहे, अल्लाह ताला उनका अजर मस्जिदों का ही लिखता होगा। शर्त यह है कि आम दिनों के पक्के नमाजी हों। तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला कभी किसी का अजर ज़ाया नहीं करता। चलिए कुछ करामात पढ़ते हैं औलिया कराम की। ताबईन में सिलत बिन अशीम एक आबिद जाहिद हैं, यानी आबिद भी थे और जाहिद भी थे, इबादत भी करते थे और दुनिया से बेरगबत भी थे। वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए शिमाल की तरफ गए। रात आई तो जंगल में इबादत के लिए जाते हैं, दरख्तों के बीच में जाकर वज़ू करके नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। एक शेर दांत निकाले सिला के पास आया, वो नमाज़ पढ़ते रहे। उन्होंने ना नमाज तोड़ी ना इनके खुशू खुदू में फ़र्क आया। शेर इनके चारों तरफ घूमता रहा। फिर सिला बिन अशीम दो रकतें पढ़कर सलाम फेरते हैं और शेर से कहते हैं, अगर तुझे मुझे मार देने का हुक्म दिया गया तो मुझे खाओ, और अगर इसका हुक्म नहीं दिया गया तो मुझे छोड़ दो कि मैं अपने रब से सरगोशी करूं। तब शेर ने अपनी दुम ढीली की और वहाँ से चला गया और इन्हें नमाज पढ़ने के लिए छोड़ दिया। जी, जानवरों में भी हिस होती है, ये तो हम समझते नहीं हैं। चंद दिन पहले किसी ने एक वीडियो शेयर की थी, अरबी में थी वैसे, कि एक ऊँटनी है और उसका मालिक पहले अरबी में बताता है कि ऊँटनी ज़रा सर खींच रही थी, यानी अड़ी कर रही थी। तो उसने कहा कि देखना अभी मैं इसके ऊपर अल्लाह का नाम पढ़ूंगा तस्बीहात तो ये क्या करती है। और वाकई फिर उसने यही किया। जूं जूं वो तस्बीह की आयात पढ़ता गया, वो ऊँटनी पहले ऊपर थी फिर ढीली हुई होती होती, जब एंड पे पहुंचा तो बिल्कुल उसका सर झुका हुआ तरकू की हालत में। साफ लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि उसको इसकी एक एक बात समझ आ रही है, हमें तो समझ भी ना आए। तो याद रखिए, जानवरों को भी पता है किसको मारना है किसको छोड़ना है। अलविदा नहायत जैसी कुतब तारीख को देखें, सहाबा कराम के तस्करों की किताबों में रसूल अकरम के खादिम सफ़ीना का किस्सा है, जिसमें है कि सफ़ीना और इसके रफ़का यानी साथी समंदर के साहिल पर पहुंचे तो देखा कि एक शेर दांत निकाले इनकी तरफ आ रहा है। सफ़ीना ने कहा, ऐ शेर, हम अल्लाह के रसूल के साथी हैं, मैं आपका खादिम हूँ, ये मेरे साथी हैं, इसलिए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चुनाचे शेर भाग गया और इतने ज़ोर से धाड़ा कि सारा मुकाम गूंज उठा। अब इन वाक्यों और हादसात का इनकार कोई कज बहस ही कर सकता है, यानी लोग कहेंगे कैसे, अच्छा शेर को अरबी आती थी, उर्दू आती थी, इंग्लिश कैसे, छोड़िए इन बातों को, क्योंकि वरना अल्लाह की सुन्नतों में ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं। अगर कलाम के तूल पकड़ने का अंदेशा ना होता तो इस सिलसिले में दसियों यानी टेंस सही और साबित शुदा किस्से नकल किए जाते। इस हदीस से तो ये मालूम होता है कि एक ऐसा रब है जो लुत्फ़ो करम वाला है, जिससे कोई चीज़ छुपी भी नहीं, इसका इल्म सब को मुहित है। इसीलिए तो फरमाता है, तीन के बीच में कोई बात होती है तो अल्लाह चौथा होता है, पांच के बीच में होती है तो अल्लाह छठा होता है, इससे कम हो या ज़्यादा अल्लाह ताला इनके साथ होता है जहाँ भी वो होते हैं। सूरत मजादला की आयत नंबर 7 है। तो क्या पता चला इससे कि अल्लाह ताला बंदे के बहुत करीब है। ये करामतें होती हैं और इसमें जो सही चीज़ है वो सही है। आप इससे आप लेकर झूठी सच्ची बातें करें, पानी पे चलना और फलां, तो कभी सोए नहीं, दलील है तो दिखा दीजिए, वरना मुबालगा नहीं करना चाहिए। सीखा क्या कि अल्लाह अपने प्यारे बंदों की गैर मामूली मदद करता है, दुआओं के नतीजे में हालात बदल देता है या दिल को सुकून दे देता है। कभी कभी आपके हालात बदल जाते हैं और कभी हालात नहीं बदलते, आपकी हालत भी बदल जाती है, आपका दिल पुरसकून होता है कि अब जो ना फिर हो जाए मैं ऐसे ही खुश हूँ। और सूरह यूनुस 62, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, याद रखो कि अल्लाह के दोस्तों पर कोई अंदेशा नहीं और ना वो गमगीन होते हैं। हज़रत आयशा से रिवायत है, हदीस कुदसी है, कि अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने मेरे दोस्त की तौहीन की, यहाँ वलीउल्लाह को अल्लाह का दोस्त कहा गया, इसने मेरे साथ लड़ने को हलाल समझ लिया। मुसनद अहमद की रिवायत 9447। क्या पता चला कि जो वाकई अल्लाह के करीबी लोग होते हैं, जो वाकई अपनी इबादत के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब पा चुके होते हैं, फिर अल्लाह ताला उनकी मदद भी करता है और उनके दिलों को ढारस भी दे देता है, और उसके साथ अल्लाह ताला का मामला बहुत ही हसीन मामला होता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह के बास बंदे ऐसे भी हैं कि अगर वो अल्लाह पर कसम उठा लें तो अल्लाह उसको भी पूरा करता है। ये मुसनद अहमद की रिवायत है 65-67। तो अल्लाह ताला में ऐसे ही लोगों में कर दे कि जिनकी ज़ुबान सच्ची हो और जिनकी बात अल्लाह के हाँ वज़न रखती हो। अगली टिप देख लीजिए कि अल्लाह ताला ही बेहतरीन मददगार है। अब तो ऐसे लगता है अल्लाह ताला बिल्कुल हमारे कहीं करीब ही है, असल में हम महसूस नहीं करते, वरना है वो हमारे करीब ही। इमाम बुखारी ने अपनी सही में ज़िक्र किया है कि बनी इसराइल के एक आदमी ने दूसरे से 1,000 दीनार कर्ज़ लिए। इसने कहा, क्या तुम्हारा कोई गवाह है? कहा, मेरा गवाह तो बस अल्लाह है। कहा, अच्छा, फिर तो अल्लाह ही काफ़ी है, यानी उसने मान लिया। कहा, तुम्हारा कोई वकील है? बोला, नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। बोला, अच्छा, फिर तो ठीक है, फनेवल मौला वनेवल वकील, हाँ, यानी मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, मुझे वही मेरा वकील है। फिर इसे 1,000 दीनार देकर आदमी चला गया। दोनों के बीच एक वक्त और मुद्दत मुतय्यन हुई। इस दयार में दोनों के माबैन एक नहर थी। जब वक्त करीब आया तो कर्ज़दार कर्ज़ उतारने के लिए दिनार लेकर आया। नहर के किनारे कश्ती की खोज में लगा, इसे कुछ न मिला। लंबी रात तक वो इंतज़ार करता रहा कि कुछ मिले। कहने लगा, बारे ताला, इसने गवाह तलब किया, तेरे अलावा कोई ना मिला। इसने ज़ामिन तलब किया, कोई ना मिला। ए अल्लाह, पैगाम इसे पहुंचा दे। फिर एक लकड़ी लेकर उसे चीरा, इसमें दीनार रखे, एक ख़त लिखा और इस लकड़ी से बांध कर नहर में फेंक दिया। अल्लाह के इज़न और मेहरबानी से वो लकड़ी चली। कर्ज़दार भी अपने साथी के वादे का इंतज़ार कर रहा था, यानी वो नहर के दूसरे किनारे पर आकर खड़ा था। जब कोई ना आया तो दिल में बोला, घर के लिए लकड़ी ही ले जाऊं। इसे पानी में वही लकड़ी दिखाई दी, इसे लेकर घर गया और जब काटा तो दीनार और पैगाम दोनों चीज़ें उसमें से निकल आईं। क्योंकि अल्लाह ताला मददगार है, वकील है और वकालत पूरी करता है। क्योंकि अल्लाह पर ईमान वाले तवक्कुल करते हैं, और अल्लाह पर ही तवक्कुल करो अगर तुम ईमान वाले हो। आप कहेंगे, ये कैसे हुआ? देखिए, ये हो जाता होता है। जो अल्लाह पे नज़रें लगाते हैं, अल्लाह उनकी अमानतों की ऐसी हिफाजत करता है। और फिर वाक़ आता है कि ये उसको मिल गई, क्योंकि उस दौर में दिरहम थे, उसको किसी चीज़ में डाल कर बांध के दे दिए होंगे। और अल्लाह के ज़िम्मे हैं, आप अपने मामले उस पर डाल कर देख लें, आप भी ऐसी बातों के गवाह बन जाएंगे। तो जब अल्लाह पे नज़रें होती हैं तो अल्लाह ताला वाकई इसी तरह के मामले एक इंसान के साथ करता है। फिर आप देखिए कि ऐसी चीज़ों को पढ़ने के बाद वाकई आपको भी तो इस पे यकीन आ जाता है ना कि बाकी मेरे अल्लाह से ज़्यादा कोई भी नहीं। तो बेहतरीन मददगार फिर अल्लाह ताला ही है, उसी पे नज़रें लगाइए, वही आपके काम करेगा। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सूरह बकरा 257 में, अल्लाह तारिकियों से रोशनियों में लाता है, कुफर इख्तियार करने वालों के मददगार तागूत रोशनी से तारिकियों में ले जाते हैं। यानी अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनु युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। ये डिप्रेशन के ज़ुलुमात होते हैं अंधेरे, अल्लाह उसे निकालता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, वल्लाहुल मुस्तान। ये सूरह यूसुफ आयत 18 है कि अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है, यानी और किसी से मदद नहीं मांगूंगा, अल्लाह से ही मांगूंगा। और सूरह हज 78, हुवा मौलाकुम फनेमल मौला वनेमन नसीर। वो मौला और बहुत ही अच्छा वो मददगार। और अनफाल 40, बिल्कुल आप देखेंगे एंड के करीब, अल्लाह बेहतरीन हामी और मददगार है। ज़रा सा वक्फ़ा लीजिए, सोचिए, मेरा ताल्लुक़ बिल्ला कैसा है? मैं अल्लाह ताला के साथ कैसा मामला रखती हूँ? गुमान क्या है? क्या अल्लाह पे तवक्कुल है? उसको वकील समझा, उसको मददगार समझा? अगर समझ लिया तो बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं समझा तो फिर मज़ीद सुनना है। और लबीद एक शायर थे, कहते हैं कि जब नफ्स तुमसे कहे तो इसका कहना ना मानो। नफ्स की पैरवी से उम्मीद ख़त्म हो जाती है, यानी फिर उम्मीदें नफ्स तोड़ देता है, असल में तो हमें दुखी करता है। अलबस्ती कहता है, थकी तबीयत को कुछ आराम पहुंचाओ, थोड़ा सा मजाक और तफरीख भी दो, लेकिन बस इतना जितना आटे में नमक डाला जाता है। यानी बहुत भी हर वक्त की हंसी मजाक फन जो होता है ना, ये दिल को मुर्दा कर देता है, फिर खुशी खुशी नहीं लगती। अबू अली बिन अल शिबल कहता है, जिस्म की हिफाजत से तो रूह बाकी रहेगी, दिया ठीक है तो आग भी जलेगी, लिहाजा नफ्स को कातिल मायूसी से ना मार डालो, ना ही अजखत उम्मीद से उसे दराज कर दो। शदायत में से फराखी की उम्मीद दिलाओ और फराखी में शदायत याद दिलाओ, इससे और उससे नफ्स ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि दवा की मनफियत मुरक्कब बनाने से ही हासिल होती है। क्या पता चला कि ज़िंदगी में अल्लाह पर नज़रें रखिए, और कभी कभी आपके नफ्स के और आपके नफ्स लवामा के बीच में कश्मकश रहती है। किसके किसके? नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, कभी वो जीतता कभी वो जीलता। दोनों को इत्तेदाल से रखने का नाम नफ्स मुतमईना। और दीन में बैलेंस रखिए, बहुत एक्सट्रीम पे जाके सब छोड़ देना या हर वक्त ही मस्ती में ही रहना, ये दोनों चीज़ें दुरुस्त नहीं है। सिलसिला सहीहा की रिवायत है 2021, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी सुन्नत है कि मैं नमाज़ भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, यानी सारी रात नमाज़ नहीं पढ़ता, रोज़ा भी रखता हूँ और खाना भी खाता हूँ, शादी भी करता हूँ और तलाक भी देता हूँ, यानी हम बिस्तरी भी करता हूँ और कभी नहीं भी करता। जिसने मेरे तरीके से बेरगबती इख्तियार की वो मुझसे नहीं। तो क्या सीखा हमने? नज़रें अल्लाह पे लगाइए। एक से एक खूबसूरत टॉपिक था, ख़ास तौर पे अब देखिए कि यहाँ वाक़यात शुरू हो चुके हैं, और इन सारी चीज़ों को अगर आप और मैं अपनी ज़िंदगी में लेकर देखें कि ये वो चीज़ें होती हैं जिसको हम अपने ऊपर लेते हैं। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको मुझे राज़ी रखे, हमसे राज़ी हो। अल्लाह ताला ने आपको मुझे जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी नेमत दी है कुरान की, हिदायत की, किताब की, अल्लाह ताला हमें उससे फ़ायदा उठाने वाला बनाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।